पश्चिम में उपन्यास का वास्तविक रूप, पृष्ठ संख्या 19। हालांकि यूरोप में उपन्यास का आविर्भाव बोकासियो, राबले तथा सर्वांतिस की कृतियों क्रमशः डेकामेरोन, गरगांतुआ एंड पात्राएंगल तथा डोन किहोटे के द्वारा हो गया था, लेकिन उपन्यास का निर्भांत रूप तो हमें 18वीं शताब्दी के डेनियल डिफो, रिचर्डसन, फील्डिंग, स्मोलेट, स्टर्न जैसे लेखकों में मिलता है। अतः कुछ आंग्ल विद्वान 18वीं शताब्दी को यूरोपीय उपन्यास का स्वर्ण युग कहते हैं। यहाँ राल्फ फॉक्स महोदय का यह कथन उल्लेखनीय होगा। इन्वर्टेड कॉमा ओपन द 18th सेंचुरी वॉज द गोल्डन एज ऑफ द नॉवल। इट वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ मैन एंड स्पोक द ट्रुथ अबाउट लाइफ विथ एन अकम्प्रोमाइजिंग करेज, फुल स्टॉप। इट हैड विट ऑल्सो एंड ह्यूमर एंड इट कंपेल्ड मैन टू अंडरस्टैंड दैट द इंडिविजुअल हैड एन इनर एज वेल एन आउटर लाइफ। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज संदर्भ ग्रंथ द नॉवल एंड द पीपल, रॉल्फ फॉक्स, पृष्ठ संख्या 92। चेंज 18वीं शताब्दी के यूरोपीय समाज में वे परिस्थितियां उत्पन्न हो चुकी थीं जो उपन्यास की प्रौढ़ता के लिए जरूरी होती हैं। शिक्षित मध्य वर्ग का उदय हो चुका था, जो अपने परिवेश और समय में गहरी रुचि रखता था। पत्रकारिता के विकास तथा एडिसन स्टील आदि निबंधकारों के प्रयत्नों के फलस्वरूप एक ऐसे गद्य का विकास हो चुका था जो वर्णन, विवेचन और चित्रण में उपयुक्त रहता है और जिसकी अपरिहार्यता औपन्यासिक लेखन के संदर्भ में असंदिग्धता स्वीकृत हो चुकी है। मध्यकाल में व्यक्ति परिवार, जाति, धर्म, परंपरा आदि से बंधा हुआ रहता था, परंतु डिफो के उपन्यास रोबिन्स क्रूसो का नायक कथा साहित्य के इतिहास में कदाचित पहली बार व्यक्ति नायक की अपनी पूरी विशिष्टता में अंकित हुआ है, जो औद्योगिक क्रांति से उद्बुद्ध पूंजीवादी वर्ग की साहसिकता, उद्यम और आशावादिता का प्रतीक है। वह अपनी व्यवहार बुद्धि तथा प्रत्युत्पन्न मति से प्रतिकूल परिस्थितियों के खिलाफ संघर्ष करता है और विजयी होता है। इसी प्रकार रिचर्डसन की पामेला का हेनरी फील्डिंग का टॉम जोन्स यथार्थ और ठोस चरित्र है, जो अपनी अपनी परिवेश जन्य विशेषताओं से संपृक्त है। इस प्रकार इन उपन्यासों में चित्रित पात्रों का व्यक्तित्व ही नहीं, वरन उनका परिवेश भी उनको यथार्थ के निकट ले जाता है। इन उपन्यासों के पात्र हमें अपने यथार्थ जगत के लगते हैं। पृष्ठ संख्या 20। उनकी विश्वसनीयता और क्रियाशीलता हमें यथार्थ के सन्निकट ले जाती है। इस समय हमें उपन्यासों का आत्मकथात्मक और पत्र शैली भी मिलती है, जो आगे चलकर मनोवैज्ञानिक उपन्यासों के रूपायन में विशेष रूप से कारगर सिद्ध होते हैं। सामाजिक या बाह्य यथार्थ तथा आंतरिक या चैतसिक यथार्थ की दो स्पष्ट धाराएं भी यहाँ से उपलब्ध होती है। डीफो, फील्डिंग और स्मोलेट जहाँ प्रथम धारा के लेखक हैं, वहाँ रिचर्डसन और स्टर्न दूसरी धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। पैराग्राफ चेंज अभिप्राय यह है कि नारी का जो आधुनिक रूप इधर निखर कर आया है, उसके मूल में औद्योगिक क्रांति से उत्पन्न कतिपय स्थितियां और विचार हैं, जिनका आलेखन इस नए साहित्य रूप में अधिक सटीकता से हुआ है। भारतीय भाषाओं में उपन्यास, पृष्ठ संख्या 20। यह पहले निर्दिष्ट किया जा चुका है कि उपन्यास एक नई विधा है और भारतीय भाषाओं में उसका आविर्भाव अंग्रेजी साहित्य के प्रभाव स्वरूप हुआ है। पश्चिम में भी नॉवल औद्योगिक क्रांति से उद्भूत नवीन सामाजिक जटिलताओं के रूपायन के लिए आया था। भारत में औद्योगिक क्रांति और नगरीकरण की प्रक्रिया 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रारंभ हुई, अतः हमारे यहाँ भी उपन्यास 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से मिलने लगा है। उपन्यास गद्य की विधा है, अतः आधुनिक काल में शिक्षा के प्रचार प्रसार, मुद्रण के विकास, पत्रकारिता के विकास, नवोत्थान से संबद्ध धार्मिक सामाजिक जागरण और उसके फलस्वरूप पुरातन रूढ़ियों के विरोध इत्यादि कारणों से हिंदी का गद्य क्रमशः शक्ति अर्जित कर रहा था। उपन्यास के विकास में गद्य का यह विकास भी कारणभूत है। पश्चिम में भी उपन्यास विकास के पूर्व गद्य विकसित होकर वर्णन, चित्रण एवं विश्लेषण की क्षमता को प्राप्त कर चुका था। इसे पूर्ववर्ती पृष्ठों में निर्देशित किया जा चुका है। भारतीय भाषाओं में उपन्यास अंग्रेजी के नॉवल के प्रभाव स्वरूप आया है, अतः अधिकांश भाषाओं में इस साहित्य रूप के लिए नवल कथा, नवल आदि शब्द प्रचलित हुए हैं। सिर्फ हिंदी और बंगला में इस नव्य रूप के लिए उपन्यास शब्द का प्रयोग मिलता है। वस्तुतः उपन्यास शब्द भारतीय काव्य शास्त्र में नाट्य शास्त्र के अंतर्गत प्रतिमुख संधि के एक उपभेद के रूप में आया है, जिसकी व्याख्या दो तरह से की गई है। उपपत्ति कृतो हृदयार्थः उपन्यासः तथा उपन्यासः प्रसादनम्, अर्थात उपन्यास में किसी बात को युक्तिपूर्वक कहने की प्रवृत्ति होती है और वह मनोरंजन के लिए होती है। पश्चिम से आयातित इस नए काव्य रूप में उक्त दोनों बातों को लक्षित करते हुए कदाचित उसे यह नाम दिया गया होगा। अभिप्राय यह है कि यह साहित्य प्रकार नया है, परंतु हिंदी वालों ने उसे जो संज्ञा दी उपन्यास, वह प्राचीन नाट्य शास्त्र से संबद्ध है। अतः अंग्रेजी फ्रेज का प्रयोग करना चाहे तो कह सकते हैं इन्वर्टेड कॉमा में, इट इज अ न्यू वाइन इन ओल्ड बॉटल। पैराग्राफ चेंज, हिंदी में इसे नए काव्य रूप के लिए उपन्यास की संज्ञा कब और किसके द्वारा प्रयुक्त हुई यह तो निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता, परंतु अन्य भारतीय भाषाओं की तरह यहाँ भी उसका आविर्भाव 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ही हुआ। पैराग्राफ चेंज पृष्ठ संख्या 21, अंग्रेजी साहित्य का प्रभाव प्रथमतः बंगला साहित्य पर परिलक्षित होता है, फलतः उपन्यास का प्रारंभ भी वहीं से होता है। सन 1857 में प्रकाशित टेक चंद ठाकुर कृत अलारेर घोरेर दुलाल को प्रथम बंगला उपन्यास माना जाता है, जो सन 1855 से 57 में एक बंगला मासिक पत्रिका में धारावाहिक रूप में प्रकट हुआ था। उसके पश्चात काली प्रसन्न सिंह कृत हुतोम पेंचार नक्शा सन 1862 में आता है, परंतु वास्तविक बंगला उपन्यास का प्रस्थान बिंदु बंकिम चंद्र के दुर्गेश नंदिनी ब्रैकेट में 1865 उपन्यास को माना जाता है। उसी प्रकार मराठी में भी सन 1857 में प्रकाशित बाबा पद्मन जी कृत उपन्यास यमुना पर्यटन को मराठी का प्रथम उपन्यास माना जाता है, परंतु यहाँ भी मराठी के बहुत से आलोचक हरि नारायण आप्टे कृत मधली स्थिति ब्रैकेट में 1890 को मराठी की प्रथम नवल कथा स्वीकार करते हैं। पैराग्राफ चीन एक ही गर्णी कृत कामिनी कांतार चरित्र ब्रैकेट में 1877 को प्रथम असमिया उपन्यास माना जाता है, परंतु उसमें ईसाई धर्म की प्रशंसा तथा भारतीयता के प्रति भरपूर तिरस्कार की भावना का आलेखन होने के कारण इधर के कई असमिया विवेचक पद्मावती देवी फूकन के उपन्यास सुधमार उपाख्यान ब्रैकेट में 1884 को प्रथम असमिया उपन्यास मानते हैं, परंतु यहाँ भी कई आलोचकों को इसे प्रथम उपन्यास के रूप में स्वीकृत करने में आपत्ति है, क्योंकि उसके कथ्य की निरूपित रीति में प्राचीन तथा अर्वाचीन निरूपण रीतियों का सम्मिश्रण हो गया है। अतः पद्मनाथ गोहाई बरुआ कृत भानुमती ब्रैकेट में 1891 को प्रथम असमिया उपन्यास माना जाता है, जो प्रकरणीय त्रिकोण के कथ्य पर आधारित है। पैराग्राफ चीन उड़िया में 19वीं शताब्दी के अंत भाग में संस्कृत शैली पर आधारित विवासिनी पद्ममाली तथा भीमा भूया जैसी कथाएं मिलती हैं, परंतु उपन्यास के कला देह का गठन तो सर्वप्रथम फकीर मोहन सेनापति ब्रैकेट में 1847 से 1918 में उपलब्ध होता है। उसी प्रकार तेलुगु में कोक कोंडा वेंकट रत्नम पंतुल कृत महाश्वेता ब्रैकेट में 1867 नामक औपन्यासिक रचना प्राप्त होती है, परंतु वह वाण भट्ट कृत कादंबरी पर आधारित है। अतः तेलुगु का प्रथम मौलिक एवं वास्तविक उपन्यास तो कंदुकुटी पंतुल विरचित राजशेखर चरित्र ब्रैकेट में 1878 है, जो अंग्रेजी उपन्यासकार गोल्ड स्मिथ के उपन्यास विकार ऑफ विकफील्ड से प्रभावित है। पैराग्राफ चेंज में वेद नायकम पिल्ले कृत प्रताप मुदलियर चरितम ब्रैकेट में 1869 को प्रथम उपन्यास के रूप में माना जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि पिल्ले अपने समय की प्रसिद्ध औपन्यासिक रचनाओं तथा डोन किहोटे के लेखक सर्वांतेस से सुपरिचित थे। प्रस्तुत उपन्यास में एक चरित्रशील हिंदू गृहस्थ के जीवन के कुछ एक महत्वपूर्ण आयामों को चित्रित किया गया है। कन्नड़ में भी ईसाई मिशनरियों के प्रभाव ने गद्य को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जिसके कारण औपन्यासिक रचनाओं का प्रणयन संभव हो सका। वहाँ 19वीं सदी के मध्य भाग में संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस पर आधारित मुद्रा मंजूषा प्रकट हुई, जिसे उपन्यास के करीब की रचना मान सकते हैं। उसके बाद कई वर्षों तक कन्नड़ में अनुदित उपन्यासों की बोलबाला रही। बंगला और मराठी से अनुदित उपन्यास प्रकट होने लगे। पृष्ठ संख्या 22, वेंकटाचार्य तथा गणनाथन ने क्रमशः बंकिम तथा हरिनारायण आप्टे की कृतियों को कन्नड़ में भाषांतरित किया। कन्नड़ के वास्तविक उपन्यास लेखक तो पुट्टण्णा माने जाते हैं, जिनकी वावे तेवू लंडे 1904 ब्रैकेट में नामक औपन्यासिक रचना को कन्नड़ भाषा में उसी आदर और सम्मान से देखा जाता है, जिस आदर से मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास सेवा सदन को देखा जाता है। पुट्टण्णा के पश्चात वासुदेवाचार्य कृत इंदिरा उपन्यास प्राप्त होता है। कन्नड़ में इन दोनों उपन्यासों को कन्नड़ के मौलिक उपन्यासों के रूप में माना जाता है। पैराग्राफ चेंज। सुदूरवर्ती दक्षिण की मलयालम भाषा में औपन्यासिक लेखन का प्रारंभ दो विदेशियों द्वारा हुआ, कोलिंस दंपति। सन 1859 में केरला स्थित ईसाइयों के सामाजिक एवं धार्मिक जीवन को लेकर श्रीमती कोलिंस एक कथा का प्रारंभ करती हैं, परंतु यह अपूर्ण ही रहती है, जिसे उनके पति श्रीमान कोलिंस सन 1878 में घटक वधम नाम से प्रकाशित करते हैं। किंतु ऐसा माना जाता है कि यह कोई मौलिक रचना नहीं है। उसके बाद सन 1882 में आर्च डिकन के कोसी द्वारा प्रणीत पुलेली कंचू उपन्यास प्रकाशित होता है, जिसमें जाति प्रथा तथा मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए इनको हिंदू धर्म में व्याप्त भ्रष्टाचार के लिए दोषी ठहराया है। इतना ही नहीं, उसमें ईसाई धर्म का भी खूब जोशों खरोश से प्रचार किया गया है। इसकी कथा वस्तु व्यवस्थित नहीं है तथा उस पर प्रचार लक्षी होने का भी आरोप है, अतः मलयालमी विवेचक उसे अधिक महत्व नहीं दे रहे। कई मलयालम विवेचक सन 1887 में अप्पुनेडगाड़ी कृत कुंदलता को प्रथम मलयालमी उपन्यास के रूप में मानते हैं। इसकी कथा वस्तु न तो ऐतिहासिक है न नितांत सामाजिक। इसमें एक राजकुमार का प्रधान पुत्री के साथ तथा राजकुमारी का एक प्रधान पुत्र के साथ प्रणय प्रसंगों को लिया गया है। उस पर शेक्सपियर कृत सिम्बेलिन तथा स्कॉट कृत आइवेनहो का प्रभाव है, ऐसा जान पड़ता है। अतः इसे सर्वथा मौलिक नहीं कहा जा सकता। बहुत से विवेचक सन 1898 में चंदू मेनन ब्रैकेट में 1847 से 1899 कृत सामाजिक उपन्यास इंदुलेखा को मलयालम का सुविकसित उपन्यास मानते हैं। पैराग्राफ चेंज। अन्य भारतीय भाषाओं की भांति गुजराती में भी नवल कथा लेखन का प्रारंभ पत्र पत्रिकाओं एवं गद्य के विकास के साथ हुआ। एक अंग्रेजी अधिकारी की प्रेरणा से नंद शंकर तुलजा शंकर मेहता ने सन 1866 में करण घेलू नामक ऐतिहासिक उपन्यास की रचना की। उसमें यथार्थ के स्थान पर रोमांस पर अधिक बल दिया गया है। उसके पूर्व गुजराती में पारसी लेखकों ने अनुवाद की प्रवृत्ति को अंगीकृत करते हुए सन 1862 में हिंदुस्तान मेध्यनु एक झंपड़ू नामक उपन्यास को प्रकाशित करवाया, जिसे कई लोग गुजराती का प्रथम उपन्यास मानते हैं, परंतु यह फ्रेंच उपन्यास ला चेन मेयर का अंग्रेजी अनुवाद हिंदी कॉटेज से सोरा बसा दादा भाई मुनसफा का सीधा अनुवाद है। अतः गुजराती के प्रथम मौलिक उपन्यास के रूप में तो करण घेलो को ही ले सकते हैं, परंतु गुजराती का प्रथम परिपक्व उपन्यास तो गोवर्धन राम त्रिपाठी कृत सरस्वती चंद्र ही है। उसका प्रथम भाग सन 1887 में प्रकाशित हुआ था। गुजराती के आलोचक इसे गुजराती साहित्य ही नहीं अपितु भारतीय साहित्य की एक असाधारण घटना मानते हैं। पृष्ठ संख्या 23। जिस समय गुजराती गद्य ही पूर्ण रूपेण विकसित नहीं हुआ था, ऐसी स्थिति में गद्य के विभिन्न आरोहों अवरोहों को प्रकट करने वाला यह उपन्यास सचमुच ही गुजराती के गौरव ग्रंथों में स्थान पाने वाला सामर्थ्य रखता है। पैराग्राफ चेंज। हिंदी के प्रथम उपन्यास के रूप में डॉक्टर रमणलाल जोशी ने डॉक्टर लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु को स्वीकृत किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में उसे प्रथम उपन्यास के रूप में माना है, परंतु इस संदर्भ में हिंदी विद्वानों में मतैक्य नहीं है। देवरानी जिठानी की कहानी ब्रैकेट में गौरी दत्त तिवारी कॉमा वामा शिक्षक ब्रैकेट में मुंशी ईश्वरी प्रसाद कॉमा पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा ब्रैकेट में भारतेंदु कॉमा भाग्यवती ब्रैकेट में पंडित श्रद्धाराम फुल्लौरी आदि रचनाओं को प्रथम उपन्यास के रूप में माना जाता रहा है, जिस पर नीचे कुछ विस्तार से चर्चा की जा रही है। हेडिंग है हिंदी का प्रथम उपन्यास। पृष्ठ संख्या 23। हिंदी के प्रथम उपन्यास के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल डॉक्टर वार्ष्णेय डॉक्टर श्री कृष्ण लाल डॉक्टर गोपाल राय डॉक्टर पारुकांत देसाई आदि हिंदी के अनेकानेक विद्वानों ने अपने विचार प्रकट किए हैं। ऐतिहासिक कालक्रम तथा गद्य में निरूपित कथा की दृष्टि से डॉक्टर शिव नारायण श्रीवास्तव ने मुंशी इंसा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी को हिंदी के प्रथम उपन्यास के लिए प्रस्तावित किया था, परंतु कृत्रिम भाषा अति मानवीय पात्रों से युक्त काल्पनिक संसार आदि के कारण हिंदी के आलोचकों ने इस मत की पुष्टि नहीं की। दूसरे इसे उपन्यास और कहानी दोनों के संदर्भ में प्रस्तुत किया जाता रहा है। उपन्यास में आवश्यक विश्वसनीय यथार्थ ब्रैकेट में प्रोबेबल रियलिटी की दृष्टि से डॉक्टर गोपाल राय ने उसके औपन्यासिक शिल्प पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया। वस्तुतः रानी केतकी की कहानी भी प्रेम सागर तथा नासिकेतोपाख्यान जैसे परंपरागत कथा कृति है। गौरी दत्त तिवारी कृत देवरानी जिठानी की कहानी ब्रैकेट में 1870 भी इसे संदर्भ की एक विविच्य कृति है। कथा में आए पात्रों के नाम तत्कालीन जीवन संदर्भ व्यवहारिक अकृत्रिम भाषा आदि को लक्षित करते हुए आलोचकों को उसमें उपन्यास की कतिपय विशेषताएं मिलती हैं, परंतु डॉक्टर गोपाल राय औपन्यासिक शिल्प के अभाव में इसे भी उपन्यास की संज्ञा नहीं देते। उसी के आसपास की मुंशी ईश्वरी प्रसाद कृत वामा शिक्षक को भी उपदेशोख्यान की श्रेणी में रख सकते हैं। भारतेंदु द्वारा प्रकाशित पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा को भी कुछ लोग हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं, परंतु डॉक्टर श्री कृष्ण लाल इसे गुजराती और डॉक्टर वार्ष्णेय उसे मराठी से अनूदित बताते हैं। पैराग्राफ चेंज। इस क्रम में और जो तीन उपन्यास आते हैं उनके नाम हैं परीक्षा गुरु ब्रैकेट में 1882 कॉमा निसहाय हिंदू 1889 तथा भाग्यवती 1878। इनमें कालक्रम दृष्टि से तो भाग्यवती ही प्रथम उपन्यास ठहरता है, परंतु औपन्यासिक गुणवत्ता की दृष्टि से जो वाद विवाद प्रचलित हैं उनमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल डॉक्टर कोट भरे डॉक्टर त्रिभुवन सिंह डॉक्टर प्रताप नारायण टंडन डॉक्टर रणवीर संग्रा डॉक्टर नगेंद्र आदि विद्वान परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढब का पहला मौलिक उपन्यास मानते हैं। तो डॉक्टर गोपाल राय पृष्ठ संख्या 24 निःसहाय हिंदू को हिंदी का प्रथम उपन्यास होने का गौरव प्रदान करते हैं। उसकी कथा गोवध की समस्या को लेकर है। परीक्षा गुरु में एक बिगड़े हुए व्यक्ति के सुधार की कथा आती है। डॉक्टर सुरेश सिन्हा डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त तथा डॉक्टर पारुकांत देसाई आदि विद्वान पंडित श्रद्धाराम फुल्लौरी कृत भाग्यवती को हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास मानते हैं। इस संदर्भ में डॉक्टर सुरेश सिन्हा लिखते हैं, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, भाग्यवती शिल्प की दृष्टि से प्रौढ़ रचना है। रचनाकार के कलात्मक कौशल ने पराजित पीढ़ी के घृणास्पद एवं दम घुटने वाले वातावरण में आशा और विश्वास का संचार करने का प्रयास किया है। भाग्यवती आदर्श का भावनात्मक चित्र नहीं, जीवन का यथार्थ है। भाग्यवती निर्विवाद रूप से हिंदी का पहला एवं आधुनिक उपन्यास है। ब्रैकेट क्लोज। संदर्भ ग्रंथ हिंदी उपन्यास उद्भव और विकास, लेखक डॉक्टर सुरेश सिन्हा, पृष्ठ संख्या 51। पैराग्राफ चेंज। इस संदर्भ में डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में स्पष्टतया विश्लेषित करते हुए रेखांकित किया है। इन्वर्टेड कॉमा ओपन, हिंदी में उपन्यास का सूत्रपात कब से हुआ? इस प्रश्न का निश्चित उत्तर देने के लिए हमें यह देखना होगा कि हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस संबंध में अनेक परस्पर विरोधी बातें कही हैं। वे एक स्थान पर श्रद्धाराम फुल्लौरी के भाग्यवती नाम के सामाजिक उपन्यास को स्वीकार करते हैं, तो आगे चलकर वे लाला श्रीनिवास के परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास बताते हैं तथा इसके पश्चात देवकी नंदन खत्री को भी हिंदी का पहला उपन्यासकार घोषित करते हैं। आचार्य शुक्ल जैसे कई विद्वान एक साथ तीन लेखकों को पहले उपन्यासकार की पदवी से विभूषित कर सकते हैं, किंतु साधारण विद्यार्थी इस तथ्य को ग्रहण कर पाने में असमर्थ रहता है। इसके अतिरिक्त डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने चंद्रकांता को, शिवनारायण श्रीवास्तव ने रानी केतकी की कहानी को तथा डॉक्टर हजारी प्रसाद ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा को हिंदी के प्रथम उपन्यास के रूप में स्वीकार किया है। इनमें से रानी केतकी की कहानी आधुनिक उपन्यास की श्रेणी में नहीं आता तथा भारतेंदु हरिश्चंद्र का उक्त उपन्यास मौलिक न होकर मराठी से अनुदित है। ऐसी स्थिति में इन्हें प्रथम उपन्यास के रूप में मान्यता देना कठिन है। शेष कृतियों में से श्रद्धाराम फुल्लौरी का भाग्यवती ही काल क्रमानुसार सबसे पहले आता है, अतः हम इसको हिंदी का प्रथम उपन्यास मान सकते हैं। पहली रचना के लिए यह आवश्यक नहीं कि उसमें विकास की सभी परवर्ती मंजिलों के दर्शन हो, ऐसा होना संभव भी नहीं। अतः इनमें उपन्यास काव्य का विकसित रूप दृष्टिगोचर न हो तो कोई बात नहीं, इससे इसकी प्राथमिकता का दावा खंडित नहीं हो सकता। ब्रैकेट क्लोज। संदर्भ ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, द्वितीय खंड, लेखक डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, पृष्ठ संख्या 418। पैराग्राफ चेंज। गुजरात में डॉक्टर पारुकान देसाई ने उपन्यास के क्षेत्र में काफी काम किया है। उन्होंने भाग्यवती को हिंदी का प्रथम उपन्यास बताते हुए उसके रचना काल को ध्यान में रखा है। भाग्यवती, परीक्षा गुरु और निसहाय हिंदू, यह तीनों उपन्यास क्रमशः 1877, 1882 तथा 1879 में प्रकाशित हुए हैं। अतः भाग्यवती असंदिग्धतया पहले की कृति सिद्ध होती है। किसी भी विधा में प्रथम संज्ञा प्राप्त रचना में शिल्प सौष्ठव की तमाम शर्तें पूरी हो यह आवश्यक नहीं है। पृष्ठ संख्या 25। प्रत्युत उसमें कतिपय कमजोरियों का रह जाना ही स्वाभाविक कहा जाएगा। दूसरे उपन्यास में निहित लेखकीय दृष्टि और उस दृष्टि की उपयुक्तता या श्रेष्ठता भी उपन्यास को विशिष्टता प्रदान करता है। इस दृष्टि से विचार करें तो उक्त तीनों उपन्यासों में भाग्यवती की अंतर्निहित दृष्टि सर्वाधिक उपयुक्त ठहरती है, क्योंकि उसका सीधा संबंध आधुनिक काल की एक प्रमुख प्रवृत्ति नारी शिक्षा और नारी जागरण से है। हिंदी का यह पहला उपन्यास है जिसमें नारी शिक्षा की बात को मुस्तैदी के साथ कहा गया है। यह बात भी पहली बार खुलकर आती है कि स्त्री की अवदशा के मूल में उसकी आर्थिक पर निर्भरता है, अतः यदि नारी को इस अवदशा से बाहर लाना हो तो उसे आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर करना होगा और यह आत्मनिर्भरता शिक्षा के द्वारा ही आ सकती है। पैराग्राफ चेंज। यहाँ भारतीय भाषाओं के प्रथम उपन्यासों की चर्चा इसलिए छेड़ी गई है कि उपन्यास ही वह विधा है जिसमें सर्वप्रथम नारी से संबद्ध सरोकारों को तजव्वो मिली है, अतः आलोच्य विषय के साथ उसका सीधा संबंध है। पहले नारी का चित्रण तथा उसकी सोच प्राचीन मध्यकालीन सामंतवादी चिंतन के तहत होती रही है। नारी के स्वतंत्र व्यक्तित्व को लेकर चर्चा आधुनिक काल में विशेषतः कहानी और उपन्यास में हुई है। पहले भोगवादी दृष्टि से ही नारी का मूल्यांकन होता रहा, मनुष्यतावादी दृष्टिकोण से नहीं। वहां शारीरिक सौंदर्य की प्रधानता थी, यहां आंतरिक और संघर्षशील नारी के सौंदर्य की बात है। यही कारण है कि भाग्यवती, सुमन, निर्मला, धनिया, चनूली, लवंगी, पर्वतिया, ज्ञानो जैसी संघर्षशील तेजस्वी नारी चरित्र हमें आधुनिक हिंदी उपन्यास में मिलते हैं।